ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इज इट थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, फ्री फॉर आत्मा ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल, जय श्री कृष्णा, ओम नमो शिवाय। तो आज के सत्संग में फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम लोग चैप्टर 16 अध्याय 16 देवी तथा असुरी स्वभाव, द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसमें हमने 3 वर्सेस किए थे। फर्स्ट वर्सेस में हमने समझा था कि डिवाइन नेचर वाले जो लोग होते हैं उनमें कौन सी क्वालिटीज होती है। डिटेल में भगवान ने हमें सारी क्वालिटीज बताई है ना। एक्चुअली ये बेसिकली ये मोड ऑफ गुडनेस की क्वालिटीज है, सात्विक गुण की क्वालिटीज है। सात्विक गुण में जो जो क्वालिटीज होती है वो सारी डिवाइन क्वालिटीज में काउंट होती है, है ना। और अगर हम ये क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करेंगे, अगर नहीं है तो उसको लेकर आएंगे, और थोड़ी है तो उसको और एनहांस करेंगे, तो हम लोग क्या होते हैं फिर मटीरियल वर्ल्ड से हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम एंट्री पा सकते हैं, है ना। तो हमें कल्टीवेट करनी है अपने अंदर ये क्वालिटीज। और फिर हमने कल 4th वर्स में हमने डेमोनिक नेचर वाले लोगों में कौन सी क्वालिटीज होती हैं वो समझी हमने, कि आसुरी स्वभाव वाले लोग क्या क्या करते हैं, है ना। तो और हमने ये भी समझा कि अगर हमें ये क्वालिटीज हैं तो हमें उसे कम करना चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें इन क्वालिटीज पर वर्क करने की जरूरत होती है ना। अगर हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है हमें डिवाइन क्वालिटीज को एनहांस करना है, और अपनी डेमोनिक क्वालिटीज हैं उसको हमें कम करने की जरूरत है, है ना। तो इन दिव्य गुण और आसुरी गुण दोनों पर हम बात कर चुके हैं। और फिर हमने ये भी समझा कि दिव्य गुण एक पर्सन को मुक्ति की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, है ना। मुक्ति की तरफ हम दो तरह से जा सकते हैं। तो पहले मुक्ति की तरफ जाना मतलब मृत्यु के बाद अपना परमानेंट घर परमात्मा के पास जाना, है ना। आत्मा परमात्मा के पास जब जाती है ना, भगवान के घर जाती है, तो एक तो मुक्ति वो होगी, है ना। जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकल जाएं और भगवान के परमानेंट धाम में पहुंच जाएं, है ना, तो ये तो होगी फाइनल मुक्ति। लेकिन एवरीडे लाइफ में भी मुक्ति मिलती है हमें, अगर हम दिव्य गुण अपने अंदर इनहेंस करते हैं, डेवलप करते हैं दिव्य गुण, है ना, डिवाइन क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करते हैं, तो एवरीडे लाइफ में भी हमें मुक्ति मिलती है। तो एवरीडे लाइफ में मुक्ति क्या है? एवरीडे लाइफ में मुक्ति ऐसे होगी कि हम जो टेंशन्स में रहते हैं अपनी नेगेटिव क्वालिटीज के कारण, लेकिन जब हमारे डिवाइन क्वालिटीज बढ़ेंगी तो हम नेगेटिविटीज से हमेशा दूर रहेंगे। जेलेसी, कंपैरिजंस, फ्रस्ट्रेशंस, एंगर, इन सब चीजों से हम दूर रहेंगे, है ना। और स्टेबिलिटी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ हम समाज कल्याण से युक्त जीवन को हम जीना शुरू कर देते हैं। और फिर भगवान ने ये भी कहा कि जो आसुरी क्वालिटीज हैं वो बंधन का कारण है ना। बंधन मतलब एक तो वही हो गया, जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे रहे, बार बार हम इसी ट्रैप में पड़े रहे, और दूसरा बंधन एवरीडे लाइफ में क्या है? नेगेटिविटी में फंसे रहे कि उसने मुझे ये क्यों कह दिया, मैंने उसे ये कहा तो उसने मुझे ये कहा, आपस में ग्रजेस की हुई है, है ना। जितने भी नेगेटिव चीजों के बारे में आप जानते हो ना, उसमें फंसे रहना एक बंधन ही तो है। फिर अब भगवान ने अर्जुन को 5th श्लोक में अश्योर किया कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें इन दोनों गुणों के बारे में तो बताया है, लेकिन तुम में ये डेमोनिक क्वालिटीज नहीं हो, तुम तो ऑलरेडी डिवाइन क्वालिटीज से युक्त होकर ही जन्म लिया है तुमने। तो फ्रेंड जैसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं ना, तो अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, है ना, कि तुम्हारे अंदर ये डिवाइन क्वालिटीज ऑलरेडी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग भगवद गीता समझने की कोशिश कर रहे हो, भगवान उन्हीं को ये संदेश देते हैं जो उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको भगवान कह रहे हैं कि तुम घबराओ मत, है ना। अगर हम भगवद गीता समझने तक की स्टेज में आ चुके हैं, यानी कि हमारे अंदर ज्यादा परसेंटेज में डिवाइन क्वालिटीज हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम परफेक्ट हो गए, है ना। एटलीस्ट हम उस स्टेज में आ गए हैं कि हम भगवान की ये बातें सुनना चाहते हैं, हमें इंटरेस्ट हो गया है भगवान की बातें सुनने में, भगवान की बातें कहने में, और हम ये सब सुनकर हम अपने आप को इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि हम अंडर कॉन्फिडेंस से निकलकर कॉन्फिडेंस में आए। और फिर भगवान के मार्गदर्शन के द्वारा, भगवान के भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा हमें ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर की जो बची खुची नेगेटिव असुरी क्वालिटीज है ना, हम उसको समझें कि हमारे अंदर कौन कौन सी असुरी क्वालिटीज है जो कि हमने कल समझी थी, और उसको हमें घटाने की कोशिश करती रहना चाहिए, है ना। और इसके लिए हमने समझा था कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इसके लिए बेस्ट तरीका है अपने अंदर की गंदगी को साफ करने का। वो एक झाड़ू को काम करती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमारे अंदर की गंदगी को साफ करती है ना। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, अपने अर्चा विग्रह की पूजा करना, चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ह्यूमैनिटेरियन वर्क में लगना, भोग लगाना, आरती करना, एकादशी व्रत फास्टिंग, भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना। तो ये जो सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है ना, इसके द्वारा जो हमारे अंदर जो नेगेटिव क्वालिटीज हमारे अंदर रह जाती है ना, उसको हम घटाते हैं। फिर उसके द्वारा हम एक बेटर लाइफ एंजॉय करते हैं और खुद भी बेटर लाइफ जीते हैं और एक परिवार को भी बेटर लाइफ दे पाते हैं। हाँ जी ममता जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो।
हरी हरी बोल। अध्याय 16 श्लोक नंबर 7। जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए है। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। तो फ्रेंड देखो, हमने अभी तक समझ लिया कि इस संसार में प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। देवी गुणों के बारे में हमें प्रभु ने डिटेल में बता दिया था फर्स्ट वर्स में, हमने आसुरी गुणों के बारे में भी थोड़ा समझा था, लेकिन अब भगवान और भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग और क्या क्या करते हैं, अब भगवान हमें और उनके बारे में डिटेल में बता रहे हैं। तो भगवान असुरी प्रवृत्ति के लोग कैसे होंगे उनके बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग असुरी होते हैं ना, वो रास्ता भटके होते हैं। वो क्या करते हैं एक्चुअली, उनको कुछ पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो सत्संग में आना, स्पिरिचुअल लाइफ जीना, इसको ये क्या कहते हैं कि ये तो बहुत बाद की बातें हैं। उनको लगता है कि उनका अभी टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी है, है ना, या उनको लगता है कि मैं बुढ़ापे में ये सब करूंगी, है ना। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर वो स्पिरिचुअलिटी का जीवन अपनाएंगे, स्पिरिचुअल लाइफ अपनाएंगे, तो उनका जीवन सुधर जाएगा। उनका जीवन पूरा उल्टा पुलटा होता है, हर पॉजिटिव चीज से ऐसे लोग दूर रहते हैं, और सारी नेगेटिव चीजें जो भी आपने सुनी होती है ना, वो अपने जीवन में सब कुछ करते हैं, है ना। हमारे आसपास ही होते हैं ऐसे लोग, है ना। अगर हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि समाज कल्याण के कार्य करो, बट वो उल्टा करेंगे और समाज को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य करेंगे, है ना। अगर शास्त्र बताते हैं सबसे मीठा बात करो, तो वो जानबूझकर हार्शनेस से, कठोरता से बात करेंगे। अगर स्क्रिप्चर्स बताते हैं हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें विनम्रता होनी चाहिए, लेकिन वो घमंड करेंगे। तो इस तरह से आसुरी का जीवन पूरा उल्टा हो चुका होता है, और वो हर चीज में नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, और समाज को नुकसान पहुंचाने का उनका पूरा योगदान रहता है। और उनमें ना क्लीनलीनेस होगी, ना इंटरनली ना एक्सटर्नली, और ना ही प्रॉपर बिहेव होगा। सफाई को फ्रेंड्स एक्सटर्नली नहीं लेना चाहिए, इंटरनली प्रोसेस भी होता है, लेकिन जो आसुरी व्यक्ति होता है वो ना तो बाहरी साफ सफाई रखेगा और ना ही वो अंदर से अपनी सफाई के बारे में सोचेगा। अंदर उसकी बहुत सारा गंदगी होगी, दूसरों के लिए घृणा, गलत फीलिंग्स, समाज को नुकसान पहुंचाने वाले विचार, वेस्टफुल थॉट्स, ना अंदर के पवित्रता ना बाहर के पवित्रता होगी, ना अच्छा आचरण होगा, है ना, कोई प्रॉपर बिहेवियर नहीं होगा उनके अंदर, वो सिविलाइज नहीं होंगे, वो गलत बिहेवियर ही करते रहे होंगे, बुली करेंगे लोगों को, लेग पुलिंग करेंगे, लोगों से हार्शली डील करेंगे, दूसरों को तंग करने वाली एक्टिविटीज करेंगे, है ना। उनके अंदर सच नहीं होगा, वो बोल कुछ रहे होंगे, अंदर कुछ सोच रहे होंगे, और अल्टीमेटली करेंगे कुछ और, तो कहना कुछ और करना कुछ और, ये भी एक असुरी गुण है। इसलिए बोलते हैं ना, अपने करने और अपने कहने का अंतर घटाना हमें आना चाहिए। जो हमने कह दिया वही सोच समझ के कहो, जो बात हम कर सकते हैं ना, हमें वही बात कहनी है, और जो कहना कुछ और करना कुछ और, ये एक आसुरी गुण है। तो इस श्लोक में हमें भगवान और डिटेल में बता रहे हैं कि आसुरी लोग कैसे हैं, और इसकी कुछ परसेंटेज हमारे सबके अंदर होती है, इसको हमें पहचानना चाहिए और उसको अपने अंदर से हमें दूर करना चाहिए, है ना। और अगर हमें अपने आसपास ऐसे लोग दिखते हैं जिनके अंदर ये बहुत सारी क्वालिटीज हैं, तो हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए उन लोगों से, है ना, क्योंकि हम उन लोगों से ज्यादा उठेंगे बैठेंगे तो ये जो नेगेटिव क्वालिटीज है ना, फिर हमारे अंदर भी आ जाती हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल रिलेशनशिप रखना है ऐसे लोगों से, जहां पर जितना रिक्वायर्ड है उतना रिलेशन रखना है, लेकिन ज्यादा इंटीमेट नहीं
रहना उन लोगों के साथ, जैसे करण के साथ हुआ था, है ना। हम लोगों को पता है सबको करण की स्टोरी, है ना। इवन दो उसके अंदर बहुत सारी डिवाइन क्वालिटीज थी, करण के अंदर वो बहुत पावरफुल था, बहुत अच्छी क्वालिटीज थी उसमें, लेकिन उसने दुर्योधन से इंटीमेट रिलेशनशिप बना लिया था। तो इंटीमेट रिलेशनशिप आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ बनाने से अल्टीमेटली वो खुद भी नेगेटिव हो जाता है ना। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि अगर हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी का जीवन अपनाएंगे, तो उनका जीवन बिल्कुल सुधर जाएगा। कई बार हमारी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में तो हमें पता नहीं चलता क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली एडवांस होंगे तो हमें एकदम क्लियर अंदर से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है ना। अंदर जैसे अंधकार रहता है, लेकिन पीछे श्लोक में हमने पढ़ा कि अंदर भगवान दीपक जला देते हैं, अंदर ज्ञान का दीपक जलने से हमें बिल्कुल चीजों की क्लियरिटी हो जाती है, समझ आ जाती है कि हमें अब अगला स्टेप क्या लेना है। ये प्रॉब्लम्स में मैं फंसी हूँ, लेकिन मुझे अब करना क्या है इस प्रॉब्लम से निकलने में। देखो फ्रेंड्स, लोग प्रॉब्लम्स होने पर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, है ना, फिजिकल प्रॉब्लम होने पर, और मेंटल प्रॉब्लम होने पर साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाएंगे, बट स्पिरिचुअल जीवन नहीं अपनाते, है ना। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को वो लोग सोचते हैं, नहीं नहीं अभी की बात नहीं है, ये तो बस जब मैं 70 इयर्स की हो जाऊंगी, बस मेरे अपने सारे जब काम खत्म हो जाएंगे तब स्पिरिचुअल लाइफ को मैंने अपनाना है। लेकिन फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल जीवन हमें बहुत ही यंग एज में अपनाना चाहिए। मतलब बचपन से अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं तब तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। हमारी अपनी जो स्ट्रगल्स होते हैं यंग एज में, है ना, तो वो नहीं होते। आज हम अपना सोचें कि अगर हम स्पिरिचुअली पहले इस जीवन को अपनाते तो कितना अच्छी तरह से जीवन जी पाते। जो गलतियां हमने की हैं पहले वो अब नहीं करते। तो टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है इन डॉक्टर्स के पास जाना, थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन है भक्ति का जीवन, स्पिरिचुअल जीवन, है ना। सब दवाइयां, सब प्रॉब्लम छूट जाती हैं अगर हम भक्ति का जीवन, स्पिरिचुअली लाइफ जीते हैं। क्योंकि देखो, जो भी हम मनगढ़ंत जीवन जीते हैं, सारी प्रॉब्लम तो वहीं से हैं, वहीं से हमें फिजिकल प्रॉब्लम भी आती है, वहीं से हमें मेंटली प्रॉब्लम भी आती है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी का जीवन जीते हैं तो हमें पता भी चलता है, यार नहीं, मुझे फिजिकली हेल्थ पे अपना वर्क करना है, मुझे मेंटल हेल्थ पे अपना वर्क करना है, मैं कहाँ पे लैक कर रही हूँ, मुझे वहां पे वर्क करना है ना। मेरे अंदर बहुत डेमोनिक क्वालिटीज हैं, मुझे उन पे वर्क करना है ना। कुछ भी, जैसे आप चलते इस रास्ते में तो आपको अंदर से अपने आप गाइडेंस आनी शुरू हो जाती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली अभी हम क्या करते हैं, जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं, और जो हमें करना नहीं चाहिए वो हम करते हैं, और उनमें पवित्रता नहीं होती जो डेमोनिक नेचर वाले लोग होते हैं। मतलब ना बाहरी पवित्रता ना हृदय की पवित्रता, अशुद्ध फीलिंग्स होती हैं उनके अंदर, उचित आचरण और सत्य नहीं पाया जाता। आप देख सकते हो यंग जनरेशन में आजकल आचरण की, उचित आचरण की कमी है। उनको क्या लगता है कि जो दूसरे देशों में जो चीजें हो रही है वो हमें भी करनी चाहिए, यही बेस्ट है, यही सही है, और फिर प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, फिर उनको डील करने नहीं आता है। तो सत्यता की कमी है, सत्य को बहुत तोड़ा मरोड़ा जाता है। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स और थे। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो ममता जी।
हरी हरी बोल। श्लोक नंबर 10। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, श्लोक नंबर 10। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आसुरी गुणों के बारे में हमें और डिटेल में बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग है ना, वो काम में मतलब लस्ट में, प्राइड में, प्रेस्टीज में, स्टेटस की गेम में फंसकर अपने आप को और आगे बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के चक्कर में मोहग्रस्त रहते हैं, और वो लोग जिंदगी में सबसे दूर चले जाते हैं, है ना। क्योंकि वो जिंदगी में इम्परमानेंट चीजें जैसे कि गाड़ी, बंगले, पैसे, ये सभी टेम्परेरी चीजें हैं, इनके पीछे भागते रहते हैं। परमानेंट क्या है? परमानेंट है हमारे कर्म। फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है कि पैसा कमाना गलत बात है, लेकिन एथिकली पैसा कमाने की बात हो रही है ना। मोरालिटी के साथ हम सारे काम करें। मतलब भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि तुम पैसा मत कमाओ। देखो, अर्जुन ने युद्ध क्यों किया था? अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने के लिए जो गाइड किया, अर्जुन तो कह रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। अर्जुन को तो बड़ा इजीली भगवान कह सकते कि ठीक है तुम जंगलों में चले जाओ, वहां पे मेरी भक्ति करो, कह सकते थे ना। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा था? अर्जुन अपने कर्म से भाग रहा था, जिस भी पर्पज के लिए भाग रहा, ये नहीं कि वो डर रहा था, है ना, वो मोह में फंस गया था ना। तो भगवान ने अर्जुन को क्या गाइड किया? जो तुम्हें मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम्हें धर्म का साथ देना, तुम्हें अपने कर्म सही ढंग से करने। तो ये जो युद्ध लड़ा गया वो अर्जुन को जिताने के लिए था, अर्जुन को राजा बनाने के लिए था, कि अर्जुन को कहा गया था कि तुम चले जाओ और तुम बस सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग कर दो और जंगलों में चले जाओ और मेरी भक्ति करो, है ना। लोग स्पिरिचुअलिटी को फ्रेंड्स ऐसे सोचते हैं कि बस सब कुछ छोड़ना है मुझे, ये सब जो भगवान ने हमें जो भी ऐश्वर्य दिए हैं या जो भी अच्छी चीजें दी, हम उसका भोग विलास ना करें, है ना। लेकिन नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं कि एथिकली लाइफ जीना, है ना। और अगर हम एथिकली मॉरलिटी के साथ जीवन जीते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी का जीवन जीते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें ये चीजें मिलती हैं, उसमें हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें हम छीन के दूसरों को नीचे गिरा के चीजें हम कर रहे हैं, इसमें हम एथिकली जीवन जीते हैं, मॉरलिटी के साथ जीते हैं, है ना, और अपना कर्म बेस्ट वे में करते हैं तो उसके रिजल्ट भी हमें बेस्ट वे में मिलने ही मिलने, है ना। तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, मतलब अल्टीमेटली उसका पर्पस क्या था, अल्टीमेटली वो राजा बना, है ना, सारे ऐश्वर्य भगवान ने उसको दिए। 18वें चैप्टर का एक श्लोक भी है, है ना, देखो मैं पढ़ ही रही हूँ। 18वें चैप्टर का 78th वर्स है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पर परम धनुर्धर अर्जुन है, मतलब जहाँ पे भगवान है और जहाँ पे अर्जुन जैसा उनका डिवोटी है, वहां पे क्या होता है, ऐश्वर्य, मतलब कोई भी ऐसी कमी नहीं होती आप लोगों का, जो भी भोग विलास आपने सोचा होता है ना, उससे कहीं 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 ज्यादा, है ना, वहीं पे ऐश्वर्य है, विक्ट्री है, विजय है, अलौकिक शक्ति, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स तथा नीति, मॉरलिटी भी निश्चित रूप से रहती है, भगवान कह रहे हैं, है ना। भगवान उसको अश्योर कर रहे हैं कि तुम लड़ो, बस तुम जो मैं कह रहा हूँ ना तुम वो करो, है ना। तो इसलिए तो भगवान ने हमें भगवद गीता में देखो अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि जो मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ ना, तुम बस चुपचाप वो करते जाओ, उसमें तुम अपने किंतु परंतु मत लगाओ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, है ना। जो भी प्रॉब्लम तुम अभी फेस कर रहे हो, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, कोई भी किसी भी तरह के, तो भगवान हमें बता रहे हैं कि अगर हम भगवान के रास्ते में चलते हैं, लेकिन उसके लिए बनना क्या है, हमें तो पता है कि भगवान है वो, है ना, लेकिन क्या हम अर्जुन जैसे डिवोटी हैं, अर्जुन जैसा दृढ़ विश्वास है हमें भगवान पे, है ना। तो हमें ये सोचना है, ये विचार करना है, तो हमें अर्जुन जैसा डिवोटी बनना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग है ना, वो इम्परमानेंट चीजें, गाड़ी, बंगले, पैसे, इन टेम्परेरी चीजों के पीछे भाग रहते हैं और भगवान को भूले रखते हैं। और परमानेंट क्या है, परमानेंट है हमारे कर्म, है ना, उनको भूल जाते हैं। हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है, किस तरह के कर्म हम एक्चुअली करने हैं कि भगवान खुश हो जाए, उसको हम भूल जाते हैं और हम टेम्परेरी चीजों के पीछे भागते हैं। देखो फ्रेंड, सिंपल बात है, हमारे कर्मों के बेस पर ही हमें सुख की अनुभूति होती है या दुख की अनुभूति होती है, या फिर हम आनंद की तरफ हम बढ़ जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, चीजें इंसान क्यों पाना चाहता है, अल्टीमेटली कि वो खुश हो जाए, लेकिन जो आसुरी होगा वो ये भूल जाएगा कि खुशी चीजों से नहीं मिलती, पवित्रता से, शुद्धि से मिलती है, है ना। और जो डिवाइन क्वालिटीज है ये हमारे अंदर जब होंगी तभी भगवान खुश होंगे ना, डेमोनिक क्वालिटीज के साथ तो भगवान खुश नहीं होने वाले, है ना। तो हमें सबसे पहले भगवद गीता का सारी यही है कि हमारे अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज बढ़ानी है और जो दानवीय गुण है, जो हमारे अंदर राक्षसी गुण है, उनको हमें कम करना है। लेकिन जो राक्षसी गुण से युक्त होगा तो वो क्या सोचेगा कि चीजें ही सब कुछ है, पवित्रता, शुद्धि, सत्यता, इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। तो चीजें पाने के चक्कर में, वो अपने आप को लोगों से सुपीरियर बनाने के चक्कर में वो कोई भी तरीका अपनाने को तैयार हो जाएगा, है ना। मतलब सक्सेस पाने के लिए वो कोई भी अनएथिकल, इमोरल, करप्शन भरे काम करता है ना। और भगवान तो कहते हैं कि भाई तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, फ्री विल है, भगवान ने हमें देके रखी है ना, है ना। हम भगवान की तरफ जाना चाहते हैं तब भी भगवान कहते हैं तथास्तु, और अगर हम गलत कामों की तरफ जाना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं तथास्तु, तो फिर उसके हमें फल मिलते हैं इंक्रीमेंट के साथ, उसको हम भूल जाते हैं। जब हम गलत काम कर रहे होते हैं हम क्या सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है ना, लेकिन जब हमें उसके फल मिलते हैं फिर हम दुखी होते हैं, हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम भूल जाते हैं कि हम कितना गलत सोचते हैं, गलत काम करते हैं। पुराने जन्मों को छोड़ो, मैं तो बोलती इसी जन्म में हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ गलत सोच रहे होते हैं दूसरों के बारे में। सक्सेस भी हम इसलिए पा रहे होते हैं कि हम दूसरों को नीचा गिरा सके कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग व्रत लिए रखते हैं गलत काम करने का, उनके लिए ये गोल होता है कि किसी तरह से भी आगे बढ़ना है दूसरों से, और आगे बढ़ना मतलब अनएथिकली, करप्शन के साथ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जितने भी देखो हम स्कैम सुनते हैं, लोग हजारों करोड़ों के गबन कर रहे हैं, छोटे छोटे लेवल पर भी करप्शन हो रही है, बड़े लेवल पर भी करप्शन हो रही है ना। इसका कारण ही है कि लोगों में असुरी गुणों का बढ़ना है। जितने असुरी गुण बढ़ेंगे लोग धर्म को छोड़कर करप्शन की तरफ चले जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको करप्शन या अपना धर्म लग रहा होगा उस वक्त, उनको अपना घर भरना, अपनी जिंदगी का लक्ष्य लगता है। तो यही एल्यूजन है और यही एंड है लाइफ का। तो इन सब से हमें बचना है। अगर हमारे अंदर ये कुछ गुण हैं तो उसको अपने अंदर आइडेंटिफाई करके हमें उसको मारना है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना, जो हमारे आसपास ऐसे लोग हैं और वो ऐसा कर रहे हैं और जिनको हम समझा नहीं सकते, है ना, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। अगर हम समझा सकते हैं तो उनको समझाना है कि जीवन जीने का गलत तरीका है, नहीं तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। अपवित्र कर्म मतलब कुछ भी गलत काम जो आपने सुने होते हैं ना, ड्रग्स लेना, चोरी करना, कुछ भी ड्रिंक्स करना, गलत आचरण में बिजी रहते हैं ये लोग, है ना, टेम्परेरी चीजों के पीछे भागते हैं। और जो परमानेंट चीजें, जो खुशी देने वाली चीजें हैं, उनके बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। इसलिए उनको स्पिरिचुअल लाइफ में, वो क्या सोचते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में एंट्री मतलब कि हर वक्त मैं कुछ और ही करना है, मतलब इस जीवन से हटके कुछ और करना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैंने देखा कि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि जीवन से हटके कुछ और करना है। नहीं फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब कि इस जीवन में रहते ही हमें इस जीवन को अच्छी तरह से जीना, एथिकली जीवन जीना, है ना, जो हमारी अनऑर्गेनाइज लाइफ है उसको ऑर्गेनाइज करना। जो जो चीजें हम पता है हमारी गलत है लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, है ना, होता है एक धक्का लगता है हमें कि हम कर रहे होते हैं वो चीजें गलत, है ना। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं, डिवोशनली हम आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअली हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपने आप ही समझ आने लगती है कि नहीं नहीं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे हम गलत है और क्या मुझे सही ट्रैक पकड़ना है, है ना। और ये कुछ देखो आसुरी गुण है जो दो श्लोकों में हमने समझे कि इसमें फंस के एक्चुअली ये लोग ही दुख पाते हैं, इसमें कोई और दुख नहीं पा रहा होता, उसके आसपास के लोग चलो दुख पाते ही पाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें वो खुद ही ट्रैप हुए होते हैं, सबसे ज्यादा दुखी होते हैं इन क्वालिटीज, अपनी इन क्वालिटीज के कारण, है ना। तो हमें आइडेंटिफाई करना है और हमें डिवाइन क्वालिटीज को अपने अंदर इनहेंस करना है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरी हरी बोल हरी हरी बोल, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स अब व्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आपके कोई एक्सपीरियंस है आप शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन।
हां जी पूजा जी,
हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल मोना दी, थैंक यू सो मच। आज का सत्संग भी बहुत डिवाइन था। आज आपने चैप्टर 16 के दो श्लोक करवाए 7 और 10। उनसे मेरी ये लर्निंग बनी है कि जो लोग आसुरी नेचर के होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या सही क्या गलत है, वो अपने ही मनगढ़ंत रूल से अपनी लाइफ जीते हैं। उनमें प्योरिटी और ट्रूथफुलनेस भी नहीं होता, उनमें सारी की सारी नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं। इसीलिए हमें भी खुद पर वर्क करके हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करके शुद्ध मन से प्रभु की ओर पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना है। और तो और आसुरी नेचर वाले लोग हमेशा लस्ट में घमंड से ग्रस्त और झूठे मान सम्मान के मोह में फंस कर मटेरियल वर्ल्ड की चीजों के पीछे भागते रहते हैं। उनको पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे वो सही है या गलत। बट हमें इन सब बातों से ऊपर उठना है, खुद में दिव्य गुण लाने हैं जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी से ही पॉसिबल है, और प्रभु को खुश करना और उनसे कनेक्ट होना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य बनाना है। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स पूजा जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने दोनों श्लोक रिवाइज कर दिए, थैंक यू। हां जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है?
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन, थैंक यू सो मच मोना जी। आज के जो आपने दो श्लोक कराए, बहुत ही सच में बहुत ही अच्छा सत्संग रहा आज का। आज अपने हमें असुरी लोगों के बारे में बताया कि उनके क्या गुण होते हैं। ये प्रवृत्तियां तो हम में भी थी, हमने पहचान ही नहीं पाते थे। कई बार होता था, आती थी अंदर से आवाज कि नहीं ये गलत है सही है, वो फैसला ही नहीं कर पाते थे कि क्या गलत है। कई बार मतलब क्योंकि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, उधर असुरी लोगों का ज्यादा प्रभाव रहता है। तो जो दिव्य गुण वाले लोग होते हैं उन लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि ये दुनिया कहते हैं कि नहीं झूठ से चलती है, असुरी लोगों का दबदबा रहता है। तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे अंदर की आवाज है एक दब के रह जाती है हमारी अंदर की। तो भगवत गीता पढ़ते हुए सब सच में मोना जी, जो हमें एक विल पावर मिली है, एक अंदर से हमें जो कॉन्फिडेंस मिला है, नहीं जो बात गलत है उस बात के लिए हम बोलते हैं, जो और कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, वो इन सब भगवत गीता पढ़ते हम सीख पा रहे हैं। मैं नहीं बोलती कि मैंने पूरा सीखा है, सीख लिया। अब सच में अब 2 साल ही हुए हैं हमें आपसे जुड़े हुए, आपके माध्यम से हम जो आप हमें बातें बताते हो, जैसे भगवान श्री अर्जुन को बताते हैं हर बात, तो हमें लगता है कि ये सब हमारी लाइफ से रिलेट है। तो जब हम भगवत गीता की बातों को, भगवान की बताई बातों को हम अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं, तो सच में ये गुण आसुरी और दिव्य गुण हमें किसी और में नहीं देखने हैं, वो हमें खुद में जब देखते हैं सच में लगता है कि ये गुण हम में ही हैं। दूसरों में ढूंढने की बजाय हम खुद में ढूंढेंगे तो हमें खुद का भी एक पता चलता है कि हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। तो जब हम अब असुरी गुणों को कैसे खत्म करना है ये भी हमने जाना कि हम हर वक्त भगवान के जो हमने एक अर्चा विग्रह की पूजा की, भोग लगाना जब शुरू किया, चैंटिंग करना शुरू की, तो भगवान से प्रेयर की, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और भगवान से यही मांगा कि भगवान जी हमने आपसे जो भूला हुआ रिश्ता, भूल गए थे आपसे हम अपना रिश्ता, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें चकाचौंध में कहीं हमारा सच में एक अंदर रहता ही नहीं है कि हम क्या हैं क्या नहीं है, वो अपनी एक पहचान ही गुम हो जाती है। तो हमें एक पहचान मिली कि नहीं, हमें हम भगवान की बताई हुई बातों पे चलना है। तो भगवान भक्ति का जीवन जब हमने अपनाया, मैं नहीं कहती कि मैं पूरा अपना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा जितना भी हम कर पाते हैं, तो उससे भगवान श्री हरि ने हमें इतनी शक्ति दी है, तो उससे हमें बहुत बल मिला है। तो सही और गलत का फैसला कर पाने में मैं मतलब एक सक्षम हो पाई हूँ। तो भगवान हमें सच में अपना कर्म कहते हैं कि बेस्ट वे में करो। अब हमारी ये कोशिश रहती है कि अब हम अपना कर्म हर हर कोई भी छोटा से छोटा जो हमें ड्यूटी मिली है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, तो हमें अपना बेस्ट दे उसमें। जैसे पहले कोई काम करना तो जैसे चिड़चिड़े स्वभाव से करना, या कुछ कई बार ऐसी नेचर बन जाती है ना, तो अब ये अच्छी बातें हम सीख पा रहे हैं। तो थैंक यू, छोटी छोटी बातों के लिए हमने भगवान जी को थैंक यू बोला कि भगवान जी सच में। अब जैसे मोना जी भी कई बार बताते हैं कि अपने बेड पे जाते हैं तो एक बार अपने पूरे दिन की अपने सारे क्रियाकलापों का मतलब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हमने कहाँ आज गलती की, कहाँ हम सही रहे, और आगे अगले दिन हम जहाँ गलत हैं उसको हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारेंगे। तो ये सीखा, तो थैंक यू का भाव यह कि भगवान जी सच में जब हम खा पी रहे हैं, उठ के आपके दूसरे दिन के लिए हम आपके लिए तैयार हो रहे हैं, आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपकी पूजा करने के लिए आपका नाम ले रहे हैं, तो सब आप ही की कृपा है, हमारा इसमें सच में कुछ नहीं है। एक तो ये भी है कि हमें अपना अभिमान छोड़ा कि हम भगवान से यही मांगते रहे, कि भगवान जी से यही बोला कि हम भगवान हम कुछ भी नहीं है, एक तिल के दाने के हमारी औकात नहीं है, आपके आगे आप ही हैं जो हमें शक्ति दे रहे हैं। अब हम जो कोई भी अच्छी बात कर पाते हैं, बच्चों को बता पाते हैं, या आसपास अपने थोड़ा सा क्रिएट कर पाते हैं अच्छा माहौल, तो वो सब भगवान जी की कृपा है। हमारी थोड़ी बहुत जो हम भक्ति के रास्ते पे चले हैं तो उन्हीं का आशीर्वाद है सच में। सात्विक गुण को भी हम बढ़ा पा रहे हैं कि फिर भी हमें एक दिन में कितनी बार कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, सोच समझ के सोचना पड़ता है कि चलना पड़ता है, कि सच में एक एक कदम, जैसे बोलते हैं ना मोना जी कभी सोचते हैं कि फूंक फूंक के रखना है, कहाँ हमने कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे, कौन लोगों से हमने कैसे निपटना है, ये हम अब जान पा रहे हैं। ये सब भगवत गीता के माध्यम से ही हम सीख रहे हैं। थैंक यू मोना जी, बहुत बहुत थैंक यू सच में। अब हम अपनी वो जो फ्री विल वाली चॉइस भी ले पा रहे हैं कि हमें आप बताते हो ना हर बात, हर श्लोक में ये बताते हैं कि फ्री विल दी है और चॉइस हमें अपनी लेनी है। तो अब जो अच्छी चॉइस ले पा रहे हैं वो सब आप ही की माध्यम से ले पा रहे हैं, आप हमें रास्ता बता रहे हैं। तो सच में मोना जी, और छोटी छोटी बातों से जो हमें अब खुशी मिलती है, पहले मैं रहती थी सिर दर्द है कुछ है, अब वो अभी कल की बात बताती हूँ। कल मेरा बेटा आया तो मम्मा सिर दर्द की टैबलेट है, तो मैंने बोला बच्चा मुझे तो याद ही नहीं आ रही है कि मैंने टैबलेट कब खाई। तो सच में क्योंकि अब वो जब उसने वो ये बात बोली ना, तो मैं कहती मेरे काही क्यों नहीं अभी टैबलेट कभी से, क्योंकि अब हमने वो बातें छोड़ दी हैं जो हम ग्रजीज बना ली है। एक तो माफ करना जो सीखा ना, सबको माफ कर दिया अंदर से, मतलब एकदम खाली कर दिया, किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं रखी, कोई जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया, कि क्योंकि भाई हमने बदलना है, सामने वाला तो नहीं बदल सकता, किसी को बदलना भी नहीं है हमें। जब हम खुद भगवान जी के बताए रास्ते पर चलते हैं और चल रहे हैं, तो
आसपास का माहौल भी हमें देखते हैं कि क्या है, लोगों को जब चेंजेस आके देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या एक सी शक्ति है भगवान की प्रेयर्स में, भगवान की भक्ति में, जो हमें मतलब बदलने को मजबूर करती है कि नहीं हमें ही अपना रास्ता सही चुनना है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल मना जी, थैंक यू
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ममता जी अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए। और इसमें मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक बार ना, हाँ जी, तो एक बार ना क्या हुआ था कि जब कृष्ण भगवान बहुत छोटे से थे, यशोदा मैया के साथ वो खेल रहे थे, तो यशोदा मैया, जैसे हम बोलते हैं अपने बच्चों को बुक्स पढ़ा करो, जैसे हम अपने उनको बोलते हैं ऐसे किया करो ऐसे किया करो, तो यशोदा मैया भी उनको समझा रही थी कि तुम भी अपने शास्त्र पढ़ा करो। उनको क्या पता कि भगवान है उनके सामने, वो तो भगवान है, उनको माया में डाला हुआ था ना यशोदा मैया को, तो वो तो भूल ही रही थी कि ये भगवान है। तो उन्होंने कहा कि भी माता उनको समझा रही थी कि वो नटखट थे वो, है ना, तो वो माखन चोरी करते थे माखन की, तो माता इससे परेशान रहती थी, तो माता तो सोचती थी कि अब ये चोरी करता रहेगा तो इसकी जिंदगी में क्या होगा इसका, जैसे हम माए परेशान हो जाते हैं तो हम भी सोचते हैं ना हमारे बच्चों को क्या होगा कि ये ऐसी आते हैं, ये पढ़ता नहीं है यार क्या करेगा तू, जैसे हम नॉर्मल हम बात करते, तो माता भी वो यशोदा मैया भी ये नॉर्मल बात कर रही थी भगवान से, तो माता ने कहा कि तुम अपने शास्त्र पढ़ा करो भाई, तुम्हें थोड़ा सा समझ आएगा क्या करना है क्या नहीं। तो भगवान ने कहा कि भाई शास्त्र पढ़ के क्या होगा माता, तो माता ने कहा कि तुम शास्त्र पढ़ोगे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा। भगवान ने कहा कि ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा, तो बोला ज्ञान मिलेगा तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा भगवान कहते हैं, जीवन अच्छा होगा तो क्या होगा, जीवन अच्छा होगा तो फिर तुम खुश रहोगे, हमेशा आनंद में रहोगे, है ना। तो भगवान के माध्यम से यशोदा मैया हमें बता रही है ना कि जो भगवत गीता में भगवान जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, ये उनके वर्ड्स हैं, ये भगवान खुद है, ये जो ज्ञान है ना, ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है, अपने आप को हमें भाग्यशाली समझना चाहिए फ्रेंड्स कि हमें ये ज्ञान मिल रहा है, ये जो ज्ञान मिल रहा है ना सबको नहीं मिल रहा है। अब अपने देखो अपने आसपास कितने लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना, ये जो ज्ञान है, ये भगवत गीता का ज्ञान है, ये अमृत के समान है। इन ग्रंथों के द्वारा, जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स है ना, इनके द्वारा भगवान हमसे डायरेक्ट बात करते हैं, हमें जीवन जीना सिखाते हैं। भगवत गीता पढ़ के एक्चुअली मैं अपना बताती हूँ कि एक कॉन्फिडेंस आता है ना, स्ट्रेंथ मिलती है, एक पावर मिलती है, जिसके द्वारा हम अपने जो भी हम डेली रूटीन की लाइफ है ना उसको अच्छे से जी पाते हैं, है ना, सिंपल बस इतना। तो अगर आप इतना भी समझ लेते हैं ना कि मेरे को अपनी लाइफ अच्छी जीनी है तो मुझे भगवत गीता पढ़नी चाहिए, बस सिंपल, है ना, तो फिर आप सिंसियरिटी से एक बार पढ़ लो भगवत गीता तो फिर आप कभी नहीं छोड़ोगे इसको, है ना। थैंक यू सो मच ममता जी। हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना।
हरी हरी बोल। मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि आप बोल रहे ना भगवद गीता हमें पढ़नी है, पढ़नी ही नहीं है, मतलब जो आप बात बताते हैं मतलब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है ये सब बातें, तभी हम कुछ चेंज कर पाएंगे खुद को भी और अपने आसपास के माहौल को तो नहीं कर पाएंगे, मतलब एटलीस्ट एक टारगेट लेके चलते हैं कि अपनी फैमिली को तो कम से कम चेंज कर पाएंगे ना, मतलब ये विश्वास लेके मैं चलूंगी। मैं खुद का अगर कहूंगी तो मैं अपना ये विश्वास लेके चलूंगी, अगर मैं पढ़ रही हूँ पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, मैं अपनी फैमिली को तो एटलीस्ट चेंज कर पाऊँ थोड़ा बहुत। ये है कि भगवदगीता पढ़नी ही नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट भी भगवान की हर बताई बातों अंदर से एक मतलब प्योरिटी रखनी है, शुद्धता जब रखेंगे तो भगवान सच में और पास आते हैं हमारे, ये मैं खुद फील कर पाती हूँ। हरी हरी बोल जी।
हाँ जी, हरी हरी बोल ममता जी, बिल्कुल सही कहा, मतलब पढ़नी तो है हमने, देखो फर्स्ट जो स्टेप है ना वो श्रवण करना है ना, जब आप सुनते रहोगे या पढ़ोगे खुद से, दो श्लोक मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, भगवत गीता लो और उसके रोज दो श्लोक पढ़ लो, चाहे समझ आती है या नहीं आती आपने पढ़नी है, चाहे उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ो खाली दो श्लोक हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी आपको अच्छे लगते हैं रोज की रोज पढ़ो, है ना। तो फर्स्ट स्टेप है, जब आप पढ़ोगे ना ये भगवत गीता तो उसमें भी ऑलरेडी पावर है, अगर आप नित्य निरंतर चलते रहोगे ना तो ये 100% है, 99% नहीं है, 101% है कि वो चेंजेस आएंगी ही आएंगे, है ना, आप इम्प्लीमेंट करोगे ही करोगे, अगर आप करोगे तो आप में चेंजेस आएंगी, आप में आएंगी तो आपके परिवार में आएंगी, है ना। तो मतलब एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, जो बताया जाता है बस उसको बिना शक के करते जाओ, जैसे हम लोग पीस और एक हैप्पीनेस अनुभव करते हैं वो आप सब कर सकते हो जो भी नए डिवोटीज हैं, है ना। थैंक यू सो मच ममता जी। हाँ जी, कोई और जो अपने लर्निंग शेयर करना चाहता है।
हरी हरी बोल।
हाँ जी मीनाक्षी जी। हाँ जी, हरी बोल
बोल। ऐसे तो बहुत कम मैं आ पाती हूँ, लेकिन ये है कि जब भी मौका मिलता है आपका सत्संग मैं सुन लेती हूँ, तो ये जो हमारा 16 अध्याय शुरू हुआ है, आज के सत्संग से मैंने ये सीखा कि ये दोनों ही जो गुण आपने बताए राक्षसी और असुरी और वो दूसरे दैवी गुण, मुझ में ये दोनों ही हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत है, दोनों ही हैं। किसी पल मैं बहुत शायद जैसे इस भगवद गीता क्या जो मुझे मैंने ज्ञान लिया उसको सुनने के बाद, आपसे अभी पूरा तो नहीं, जितना भी हुआ बीच में मिस कर देती हूँ, तो जितना सीखती हूँ और उसको मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ अपनी ही नहीं अपने बच्चों की, अपने फैमिली, अपने हस्बैंड की करती हूँ। और असुरी गुण सुनने, ये जो आज आपका सत्संग था वर्सेस सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये असुरी गुण भी कुछ परसेंट, मतलब कि मोर देन 50% है कहीं ना कहीं। हम कहीं लालच कर देते हैं छोटी छोटी चीजों में ही, बड़ी चीजें नहीं, हम छोटी छोटी चीजों में ही कर देते हैं, करते हैं, अपने बच्चों के लिए कर देंगे, अपने हस्बैंड के लिए कर देंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कर देते हैं। तो अब इस ज्ञान से ये है कि हमें उसको थोड़ा किस तरीके से डे बाय डे उसको कम करना है। एकदम से नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो हमारी शुरू से कंडीशनिंग, जैसे आपने कहा कि हमें जो भगवद गीता का जो ज्ञान है वो हमें बचपन से ही लेना चाहिए, बहुत सही होता है। मुझे आज ये मैं समझ सकती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जब हमारे हम बच्चों की शादियां हो जाएंगी, हमारे सब अपने अपने सेटल हो जाएंगे, तो तब हमें कोई काम नहीं है, तब हम एक भगवान के रास्ते पे चलेंगे, नहीं तब बहुत लेट हो चुका होता है। हमें ये काम, सच में कह रही हूँ, थैंक्स टू यू मोना दी, मीनू दी, कि मैं अपने बच्चों को ये क्वालिटीज दे पा रही हूँ। ज्यादा नहीं बट इतना है कि आरती जब भी सुबह अगर लेट हो रहा है तो शाम को हम पूरी फैमिली, लाइक मी एंड माई किड्स एंड हस्बैंड, हम एक साथ आरती करें, एक साथ तुलसी के आगे जो जगाएं, सब जो अच्छे हैं, सुबह भोग लगाना, ये छोटी छोटी चीजों से बच्चों में अच्छी क्वालिटीज डाले, ताकि जब उनको अपनी लाइफ में अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने हैं, वो अपना चेक कर रहे हैं, तो उनको पता चले कि उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं, वो अपने ऊपर चेक कर सकें। और ये आज सिर्फ भगवद गीता के ज्ञान, मुझे नहीं लगता किसी और तरीके से हम स्कूल में जाते हैं कहीं भी हमें ऐसा ज्ञान मिल सकता है, जो ज्ञान आपके माध्यम से, गोलक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से हमें मिल रहा है। और ये द बेस्ट नॉलेज है जो सबके सबको चाहिए, इसके बिना किसी का मतलब कि वो कहते हैं ना, एक सक्सेस मिलना, ये भी लाइफ का एक सक्सेस है। आपका आपको इस मुक्ति के लिए, इस ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। और थैंक्स टू यू कि ये जो क्वालिटीज मैं जान सकी, पहले तो जानना जरूरी है कि पहले मैं अपने आप को उसको क्लासिफाई कर सकूं कि मेरे में कौन से गुण हैं, असुरी गुण है कि दैवी गुण है, दैवी गुण को और अच्छा और बढ़ाऊं और असुरी गुण को परसेंटेज वाइज कम करूं। तो और साथ ही साथ मेरे जिनमें मैं चेंजेस, ये जरूरी नहीं है कि लाइक हर एक कोई जिसमें मुझे कोई असुरी गुण दिखता है तो मैं उसको बोलूंगी तो वो चेंज हो ही जाएगा, नहीं, वो शायद हो सकता है और ज्यादा वो हो जाए, लेकिन ये है कि जहां जिस लेवल तक मैं किसी में कम कर सकूं तो मैं जरूर करूंगी आपके ज्ञान से, भगवद गीता के ज्ञान से। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, ब्यूटीफुल रिव्यू और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आप हमेशा शेयर करते हो। और बिल्कुल, जैसे मैं भी अपना एक्सपीरियंस, मतलब अपना बताऊं पर्सनली, तो मुझे भी लगता है कि भगवद गीता पढ़ने के लिए मेरे बहुत, मैं बहुत लेट हूँ, है ना। और जनरली लोगों का क्या मानना होता है, जनरली लोग ये बोलते हैं कि जब उनको बोला जाए ना कि आओ भगवद गीता पढ़ लो, आ जाओ सेशन में, या ऐसा कोई सत्संग भेज, जैसे मैं, मेरी एक फ्रेंड्स है यहाँ पे, फ्रेंड्स ग्रुप है पूना में, तो मैं उनको हमेशा ही अपना जो गोलोक एक्सप्रेस के समरीज रहती हूँ उनको, मैं कभी नहीं बोलती मेरा सत्संग ज्वाइन करो, मैं कभी नहीं बोलती, हमेशा बोलती हूँ कि एक बार भगवद गीता पढ़ो, फिर मैं वो जो समरी सेशंस होते हैं उनको भेजती रहती हूँ कि चलो यार कम से कम इतना इतना सुन लो, जरूर सुननी चाहिए। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम चली होती है उनकी कुछ ना कुछ, तो मैंने बोलती यार ये पढ़ो आप, बाकी सब भूल जाओ। तो बस सबका ये मानना होता है ज्यादातर कि यार नहीं, अभी तो टाइम नहीं है, हमारी एज नहीं है, या ये तो सब बुढ़ापे में करनी चाहिए हमें डिवोशन, तो बस वही एक माइंडसेट है। देखो जब भगवान को हम फूल चढ़ाते हैं, है ना, तो हम क्या बासी चढ़ाते हैं, दो तीन दिन पुराना चढ़ाते हैं, या कल का भी नहीं चढ़ाना चाहेंगे, है ना। हम फ्रेश चाहते हैं कि फ्रेश आज फूल लाएं भगवान के लिए, वो चढ़ाएं भगवान के लिए, फ्रेश खाना जो बिल्कुल तवे से उतरती चपाती चढ़ाऊं मैं भगवान को, भोग लगाऊं जो दाल बन रही है, जो जो भी छोटा मोटा कुछ भी मैं बनाती हूँ, तो मुझे लगता है फ्रेश बिल्कुल बस वो दूं, है ना। सभी ऐसा ही करते होंगे। तो अगर हम ये चीजें भगवान फ्रेश ही लेते हैं, तो स्पिरिचुअल जीवन में हैं, हम कैसे हम चाहते हैं कि हम ये चीजें देखो आफ्टर 70 हमें ये चीजें समझ, हमें अभी समझना डिफिकल्ट लगती है भगवत गीता, है ना। मतलब पढ़ना आसान है, ठीक है पढ़ लिया, लेकिन उसको घुसाना उसको इम्प्लीमेंट करना इज डिफिकल्ट, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि बंदा एक रीडिंग दूसरी रीडिंग के बाद बंदा एक रीडिंग दो रीडिंग तो सिर के ऊपर से जाती है कि ठीक है सुन रही हूं मैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना इज डिफिकल्ट। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुढ़ापे में हमें भगवत गीता समझ आ जाएगी और हम उसके लायक ही नहीं रहेंगे ना उसको उस जीवन जीने के। भगवत गीता मतलब लाइफ जीने का तरीका बता रही है ना, आर्ट ऑफ लिविंग है भगवत गीता, आर्ट ऑफ डाइंग भी है, आर्ट ऑफ लिविंग है मेन, कि आप जीवन कैसे जीना है ना। तो बुढ़ापे में जब हमारी सारी बॉडी नहीं चलेगी, अंदर मेंटली हम वीक हो गए होंगे और हमारे पास कोई स्ट्रगल्स नहीं होंगे लाइफ के, मतलब मैक्सिमम स्ट्रगल्स अभी है ना लाइफ के, है ना, स्ट्रगल्स अभी है और भगवत गीता हमें पढ़नी है बाद में, डिवोशनली हमें आगे ग्रो करना, वो कैसे है ना। अगर हमें आगे बढ़ना है लाइफ में, इन स्ट्रगल्स से ऊपर जाना है ना, जो मेन है भगवत गीता पढ़ना डिवोशनली पढ़ना, कि हम जो आज के जीवन जो दुखी हुआ पड़ा है हमारा इससे कैसे निकले, है ना। अगर प्रॉब्लम्स आ जाए तो आज ही इसको डील करना है ना, ये थोड़ी कि आज मेरे को प्रॉब्लम है तो इसको मैं 30 साल बाद डील करूंगी। तो भगवत गीता आज ही पढ़नी चाहिए हमें, आज भी हम बहुत दूर है, जो भी जिस एज में है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद भी जीवन जी रहे थे। मीनाक्षी जी आप वो, आपकी बेटी छोटी है ना, और भी बहुत सारे हमारे ग्रुप में सारे यंगस्टर्स है ज्यादा, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो वो खुद भी लाइफ जी सकते हैं और अपने बच्चों में देखो ये जो चीज सीड देंगे ना स्पिरिचुअलिटी का, तो वो बच्चे आपको हमेशा याद करेंगे कि मेरे मदर ऐसी थी, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए, जो कि इस जन्म में हम इस मतलब इस एरा में हम ये सब भूल रहे हैं। हमें क्या लगता है कि जो पश्चिम वाले कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, वो पश्चिम वाले इधर आ रहे हैं, वो यहाँ का स्पिरिचुअल जीवन जीना सीखने आते हैं यहाँ पे इंडिया में, और हम क्या हम उनके पीछे भाग रहे हैं कि ठीक है जैसा वो करते हैं हमें वैसा करना है ना, वो बस मन घृणन जीवन जी रहे हैं। तो हमें नहीं, ऐसे नहीं है, हमें जो भगवत गीता में बताई जा रही है चीजें हमें उनको फॉलो करना। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है?
हरी हरी बोल।
हाँ जी कोमल जी, हाँ जी आप बात कर रहे हैं।
हरी हरी बोल एवरीवन। मोना दी, आज का सत्संग भी बहुत ही आनंददायक था। वैसे तो सारी भागवत गीता मेरे को लगता है कि एक लाइफ का बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, और भगवान जो अर्जुन जी को के माध्यम से हम सभी को बताते हैं वो एक जैसे कहते हैं ना बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन ही कहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि हर एक चैप्टर में हम अपने जीवन में उसको उतारे ना तो सच में जीवन सफल ही हो जाएगा। तो आज के जो श्लोक थे आज के 16 अध्याय से, जो मेरी ये लर्निंग बनती है वो इस तरह है कि हमारे में जो दैवी गुण होते हैं वो हमें अच्छे गुण भगवान जी बता रहे हैं कि जो अच्छे गुण है वो इंसान में जिन इंसानों में होते हैं और जो उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं वही जो भक्त हैं वो मेरे को प्रिय हैं, और जो असुरी जो होते हैं उनको गुणों को हम कंट्रोल करते जाएं और दैवी गुणों को बढ़ाते जाएं तो हम एक सत्यता के मार्ग पर और सच्चे जीवन की ओर बढ़ते जाएंगे, तभी हम प्रभु श्री हरि से भी अपना कनेक्शन बना पाएंगे। और ये जो क्या कहते हैं आज का जो आसुरी कहते हैं कि ना जो हमारे जो गलत आदतों वाले जो लोग होते हैं ना वो ये समझ नहीं पाते हैं कि उनमें क्या गलत है क्या सही है। वो जो जल्दी से एक चीज को प्राप्त करने से गलत तरीके से एक चीज को प्राप्त करने की होड़ में लगे रहते हैं कि मिल गई और उसमें ही उनको गर्व होता है कि वो उन्होंने वो चीज हासिल कर ली। अदरवाइज तो वो उस चीज को प्राप्त करके ऊंचाई को प्राप्त नहीं करते बल्कि वो अधम मतलब गिरने की ओर जाते हैं। और जो इन चीजों को हम को छोड़ते हुए अपने जीवन में जो है ना अच्छे गुण है सत्यता सादगी और अभिमान को छोड़ना इनको अपनाते हुए आगे बढ़ते जाएं तभी हम अपने सात्विक जीवन की ओर बढ़ेंगे और तभी हम अध्यात्म को भी प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज तो अगर हम असुरी गुणों के को कंट्रोल नहीं कर पाए ना तो अध्यात्म की और भी बढ़ने में जो है ना वो बाधक ही रहेगा। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज कुमार जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा ना भगवत गीता इंस्ट्रक्शन मैनुअल है एक्चुअली, है ना, जीवन जीना सिखाती है हमें ये। सच बताऊं मुझे लगता है कि भगवत गीता तो मेरा आज का जीवन मुझे इजी कर रही है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में मुश्किलें नहीं आ रही है या जो स्पिरिचुअलिटी का जीवन जी रहे हैं उनके जीवन में मुश्किलें नहीं आती होंगी, है ना। मुश्किलें आती हैं लेकिन उनको डील करना जाता है ना, माइंड सेट चेंज हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, स्पिरिचुअलिटी मतलब कि सब कुछ करते हुए भगवान से कनेक्शन। कुछ भी कर रहे हो आप घर में, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या कर रही हूँ। ये नहीं कि मेरे को कोई ऊपर है तो मेरे को बहुत अच्छे से बात करनी है, और कोई मेड है तो मुझे कुछ भी चिल्ला के बोलना है, है ना। तो वो अपने आप पे चेक रखना कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करती हूँ सारा दिन। तो मतलब कुछ भी करते हुए, चाहे छोटा काम है चाहे बहुत बड़ा काम है, उसमें करते हुए भगवान से कनेक्शन। तो नेचुरली है कि हम फिर गलत काम करेंगे नहीं, और बिल्कुल अगर हम अपनी डिवाइन क्वालिटीज को इनहेंस नहीं करेंगे और हम खाली डेमोनिक क्वालिटीज ही है हमारे अंदर, तो बिल्कुल हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारी एंट्री नहीं हो सकती, स्पिरिचुअलिटी में हम आ ही नहीं सकते। तो फर्स्ट स्टेप है स्पिरिचुअलिटी में, तभी एंट्री होगी जब हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज हमारी बहुत ज्यादा होती है, और साथ में जो अंदर हमारे राक्षसी गुण होते हैं उनपे वर्क करने की प्रबल इच्छा होती है कि नहीं यार मेरे में ये कमी है, मेरे को नहीं करना, मैं इतना चोर से किसी को बोलती हूँ, किसी के बारे में मेरी ईर्ष्या है, किसी के बारे में द्वेष करती हूँ, तो मुझे नहीं करना है, है ना। वो जो अंदर से एक आती है ना फीलिंग, अगर वो आ रही है ना, तो अपने आप वो चीजें वर्कआउट होने शुरू हो जाती है ना। अपने आप पहले तो अंदर पता होना चाहिए कौन सी, वही बात है भगवद गीता से हमें पता लग रहा है, पहले तो ये भी नहीं पता था कि कौन सी डिवाइन क्वालिटीज हैं कौन सी डेमोनिक क्वालिटीज है। डिवाइन क्वालिटीज को हम अपने वीकनेस से समझते थे, और हमें लगता था कि जो डेमोनिक क्वालिटीज है शायद यही, इसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में, है ना। तो भगवद गीता पढ़ने से हमें बहुत सी चीजों का पता चला, एक्चुअली जीवन जीना समझ आया है। तो थैंक यू सो मच कुमार जी, थैंक यू। ठीक है, फिर हम भजन की तरफ चलते हैं। रेनु जी आज आपके भजन के टर्न, आप भजन गा सकते हो। हरी बोल।
हरी हरी बोल मोना जी, हरी हरी बोल एवरीवन। मोना जी आज का आपका सत्संग तो हमेशा ही डिवाइन होता है, आज का सत्संग भी डिवाइन रहा, बहुत ही आनंद आया सत्संग सुनने का, बहुत ही आनंद आया। आज आपने हमें आसुरी गुण वाले लोगों के बारे में बताया, भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें ये समझा रहे हैं कि हमारे अंदर दोनों प्रकार के क्वालिटीज हैं। हमने अपने अंदर आसुरी क्वालिटीज खत्म करनी है और दैविक गुण लाने हैं, और अपने अंदर की गंदगी को साफ ही करना है, और नेगेटिविटी जो हमारे अंदर नेगेटिविटी क्वालिटीज है वो हमने अपने अंदर से खत्म करनी है और अच्छी क्वालिटीज लानी है। जैसे कि हम अपने अच्छी अच्छी भगवान जी की अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ ली, भोग लगा लिया, चैंटिंग कर ली, और अच्छे से पूजा की, नियम अपना नियम बनाया, और भगवान हमें डिटेल में असुरी लोगों के बारे में जो बता रहे हैं कि असुरी गुण वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा ही रास्ता भटके होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि जीवन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। और जब हम उन्हें ये बताएंगे कि आप ये काम करो, वो कभी भी नहीं करेंगे, और वो उल्टा बुल्टा काम ही करेंगे। वो ना तो अपने अंदर की सफाई करेंगे और ना ही उनकी बाहरी सफाई करेंगे। हमने असुरी स्वभाव वाले लोगों से रिलेशन ही नहीं बढ़ाना है और अपने अंदर दिव्य गुण लाने हैं। असुरी स्वभाव वाले जो लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी चीजों के पीछे ही भागते हैं, जैसे हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इन सब चीजों के पीछे ही भागते हैं। थैंक्स मोना जी, जब से मैंने भगवत गीता पढ़ रही हूँ तब से मैं अपने आप में बड़ा खुश रहती हूँ और मुझमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं। थैंक्स मोना जी, जितना भी मैं थैंक्स करूँ उतना ही कम है। मोना जी मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। नवरात्रों का लास्ट दिन था तो उस दिन हमने कंजकें देनी थी, मेरे हस्बैंड जो वो नारियल छील रहे थे, साफ कर रहे थे, जब नारियल साफ हो गया तो तब उन्होंने मुझे आवाज लगाई। मैं भी किचन में थी, एक साइड में वो खड़े थे, एक साइड में मैं खड़ी थी। वो मुझे बोलने लगे देखना ये नारियल पे क्या बन गया, जब नारियल साफ हुआ था। तो जब मैं नारियल देखा तो मैं हैरान हो गई, देखा पूरा माता जी का जो शेर था पूरा बना हुआ था, पूरा डिट्टो ऐसे लग रहा था जैसे माता जी हमारे पास खड़ी हैं। मेरे जो हस्बैंड वो हैरान हो गए, मैं भी बड़ी हैरान हो गई, मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। वो वाला जो फिर मैंने तो चलो जैसे कैसे कंजकें दी, तो वो वाला मैंने पीस था जिसपे पूरा माता जी का जो लाइन बना हुआ था वो मैंने रख दिया एक साइड पे। फिर शाम को मेरी बेटी ऑफिस से आई तो मैंने अपनी बेटी को वो बताया, तो उसने मुझे बोला कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं इसकी पिक ले लेती। फिर उसने पिक लेके रखी, मैं उस दिन हैरान परेशान। तो मैंने अपनी बेटी को बोला इस बार मैंने पूजा भक्ति ज्यादा की है इसलिए हुआ। तो वो हंसने लगी, बोलती मम्मा आप ऐसे ही कर रहे हो, है तो पूरा माता जी का शेर ऐसे लग रहा है जैसे पूरा ऐसे हमें देख रहा है। तो मैं बड़ी खुश रही उस दिन मोना जी। जब से मैंने भगवद गीता पढ़ रही हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होता है। मुझे तो हमेशा ही इंतजार रहता है कि कब टाइम हो और मैं जे भगवत गीता पढ़ू। भगवत गीता तो मैं रेगुलर अटेंड करती हूँ मगर मैं बोल नहीं पाती हूँ। चलो थोड़ा थोड़ा बोलना मैंने शुरू किया है। हरी हरी बोल, मोना जी आगे मैं अपना भजन सुनाती हूँ। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। मैंने सौंपी है जीवन की नैया तेरे हाथ, मैंने सौंपी है जीवन की नैया तेरे हाथ। लोगों से हमने सुना है हर दम तू ही देता है, हारे का साथ मैंने सौंपी है जीवन की नैया तेरे हाथ। मैंने सौंपी है जीवन की नैया तेरे हाथ, मेरे दोनों हाथ तेरे आगे, क्या है कमी इनमें तू बतला दे। मेरे दोनों हाथ तेरे आगे, क्या है कमी इनमें तू बतला दे। क्या वो लकीर नहीं है, क्या वो तकदीर नहीं है, जहाँ हो नाराज मैंने सौंपी है जीवन की नैया तेरे हाथ। लोगों से हमने सुना है हार का देता साथ, मैंने सौंपी है जीवन की नैया तेरे हाथ। इन हाथों को है तेरी दरकार, मेरे पीछे है पूरा परिवार। इन हाथों को है तेरी दरकार, मेरे पीछे है पूरा परिवार। नैया मझधार फंसी है तेरे होंठों पे हंसी है, क्यों दीना नाथ मैंने सौंपी है जीवन की नैया तेरे हाथ। मैंने सौंपी है जीवन की नैया तेरे हाथ। लोगों से हमने सुना है हर दम तू ही देता है, हारे का साथ मैंने सौंपी है जीवन की नैया तेरे हाथ। जिसे दिया उसे खूब दिया है शाम, मुझ में क्या इंसाफ किया है शाम। जिसे दिया उसे खूब दिया है शाम, मुझसे क्या इंसाफ किया है शाम। क्या उनके हाथ है ज्यादा, जा फिर औकात है ज्यादा, बतला दो शाम मैंने सौंपी है जीवन की नैया तेरे हाथ। लोगों से हमने सुना है हर दम तू ही देता है, हारे का साथ मैंने सौंपी है जीवन की नैया तेरे हाथ। भक्तों से है क्या मुख मोड़ लिया, जहाँ तकदीर बदल ना छोड़ दिया। भक्तों से है क्यों मुख मोड़ लिया, जहाँ तकदीर बदल ना छोड़ दिया। कहता पवन ना छूटे, भरोसा ही ना टूटे, रख लेना बात मैंने सौंपी है जीवन की नैया तेरे हाथ। मैंने सौंपी है जीवन की नैया तेरे हाथ। लोगों से हमने सुना है हर दम तू ही देता है, हारे का साथ मैंने सौंपी है जीवन की नैया तेरे हाथ। हरी हरी बोल।